बहुत सरल उत्तर है इसका। उत्तर यह है कि जिनके पास चक्षु होते हैं उनके पास चक्षु दर्शन भी होता है, लेकिन उनके पास अचक्षुर दर्शन नहीं होता ऐसा कोई कायदा नहीं है, क्योंकि चक्षु के अतिरिक्त बाकी जितने भी जानने के मार्ग हैं उनका जो भी दर्शन होगा वो अचक्षुर दर्शन, इसलिए 12वें गुण स्थान तक बराबर चल सकता है। ये प्रश्न मंच करते हैं जो लोग, वो काफी खींचातानी करते हैं उसमें, लेकिन जब कभी भावनात्मक विषय आता है किसी उपदेश में तो उसके बाद प्रश्न मंच यदि करते हैं तो अब जो करते हैं उनकी वो जाने, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उन भावनाओं के साथ यदि वो चुपचाप चला जाए घर तो शायद उसका हित हो जाएगा, लेकिन प्रश्न मंच में क्या होगा, फिर वो उसका दिमाग उसमें चलेगा, यानी वो भावना से बुद्धि में आएगा, बुद्धि से मन में आएगा, तो फिर जो विशुद्धि है वो साथ लेकर के नहीं जा पाएगा। फिर इनाम आखिरी में सबसे खतरनाक चीज होती है मान कषाय को प्रेरित करने वाली, और फिर थोड़े से पुष्टि सी होती है, अंदर ही अंदर लगता है कि आह जीत गए अपन। बाकी फिर भी अध्ययन करने के हिसाब से अभी भी यहां पर जो वो आते हैं ना प्रश्न, कई प्रश्न पत्र आते हैं तो लोग आंसर तो चीटिंग करके ले जाते हैं हमसे पूछ करके तो अपनी मेहनत करना भी जरूरी है उसमें, लेकिन हाँ यदि हम ऐसा बता दें कि फलाने शास्त्र में है तो भी एक हिसाब से ठीक है, वहां पर उसका कुछ तो श्रम होगा, वो पूरा डायरेक्ट आंसर ही ले जाते हो फिर इसके आगे अवधि दर्शनी नाम अवधि ज्ञानीवत, अवधि दर्शनियों का जो क्षेत्र है वो कितना है, अवधि ज्ञानियों का जितना क्षेत्र है उतना ही है। केवल दर्शनी नाम, केवल दर्शनियों का क्षेत्र केवल ज्ञानीवत, केवल ज्ञानियों के समान है। लेश्यानुवादीन है, अब लेश्या के मार्गणा से कृष्ण नील कापोत लेश्या नाम, यहाँ कापोत छपा है, उसमें क्या छपा है, बाकी हर जगह कपोत आया था, खैर ठीक है, कापोती ऐसा ई यहां पर कर दो तो कापोती बन जाता है, लेकिन वैसे कपोत लिखा जाता है, कपोत यानी कबूतर। अब क्या है कि कई शब्द जो है संस्कृत से ही बने हिंदी में, अब वो कपोत कपोत कबूत कबूत कबूतर ऐसा बन गया, वो ये अपभ्रंश ऐसे ही तो बनते हैं। बुंदेलखंड में भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो देहाती भाषा में बोले कि अभी बाहर मत निकलो ततूरी है, ततूरी शब्द सुना आपने कभी, नहीं सुना, वो बुंदेलखंडी भाषा का एक शब्द है, ततूरी का मतलब होता है तप्त उर्वी, उर्वी यानी धरती और तप्त यानी तपी हुई, तो ततूरी का मतलब खूब गर्म है जमीन, इसलिए अभी बाहर मत जाओ। तो ऐसे बुंदेलखंडी में भी शब्द बने, गुजराती में, मराठी में, कर्नाटक भाषा में, और वहाँ तमिलनाडु केरला और इधर बंगाली, और यहाँ गुजराती में भी बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे छानबीन करने पर जो मूलतः संस्कृत से ही चले थे और अभी थोड़ा सा चेंज होते होते इस प्रकार उनमें परिवर्तन आ गया है। बड़ी सुंदर भाषा संस्कृत, अभी देखते जाइए, आप तो सुन ही रहे, हम तो गुरुजी से सुनते सुनते भी काफ़ी कुछ हमें आने लग गया था। वो तो सीधी बात है कि जैसे जो भाषा माँ बोलती है बच्चे के साथ पहले पहले शुरू शुरू में, तो वो उस भाषा को समझने लग जाता है और फिर वो भाषा उसको आने लग जाती है, कितनी भी कठिन भाषा क्यों नहीं। अभी यहाँ पर आप इंग्लिश सीखो तो 4-5 साल में भी वैसी अंग्रेजी नहीं बोल सकते जो 2-4 साल का बच्चा वहाँ बोलता है अमेरिका में और इंग्लैंड में, तो वैसी परिस्थिति बनती है। तो कृष्ण नील और कपोत लेश्या वाले जीवों के 3 अशुभ लेश्या हैं। मिथ्या दृष्टिया दसंयत सम्यक दृष्ट्यंता नाम, पहले से 4थे गुणस्थान अयदोति छले साओ, 4थे गुणस्थान तक 6 लेश्याएं होती हैं। तो मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर असंयत सम्यक दृष्टि पर्यंत सामान्य उक्तम क्षेत्रम, जितना सामान्य से क्षेत्र बतलाया था उतना ही क्षेत्र लेना। तेज पद्मलेश्या नाम मिथ्या दृष्टियाद्य प्रमत्तांता नाम लोकस्य असंख्य भाव, तेज और पद्मलेश्या, पीतलेश्या का नाम यहाँ तेज मिलेगा आपको सिद्धांत ग्रंथों में, और वैसे देखो तो पीतलेश्या मिलता, ये तेज लेश्या कहलाती है। तो तेज लेश्या और पद्मलेश्या, इन 2 लेश्या वाले जीवों का 6 लेश्याएं, लेश्याएं भावों का रंग, योग प्रवृत्ति लिख्या कसाय आणु रंजिया हुई, गुमट सार जीवकांड में गाथा आती है, जोग पौती लेसा कसाय आणु रंजिया हुई, जो कषायों से रंगी हुई मन वचन काय की प्रवृत्ति है उसका नाम लेश्या है। और इसलिए गोरे शरीर वाले को भी कभी बोलते हैं ना कि तुम तो ऊपर से गोरे हो, अंदर से तो बिल्कुल क्या कहना समझ लो। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि भावों का जो रंग है वो कलुषित है। तो द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या, ऐसे दो भेद होते हैं लेश्याओं के। द्रव्य लेश्या यानी ऊपर का रंग, भाव लेश्या यानी भावों का रंग। कभी सांवला शरीर हो लेकिन अंदर से भाव उज्ज्वल होते हैं तो ऐसा बन सकता है। तो तेज और पद्म लेश्या वाले मिथ्या दृष्टि को लेकर अप्रमत्त गुणस्थान, सातवें गुणस्थान तक रहती है पद्म लेश्या, आठवें गुणस्थान से नियम से शुक्ल लेश्या है। तो इनका लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात्वा भाग है शुक्ल लेश्या नाम और शुक्ल लेश्या वालों का, मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायंता नाम। अब देखिए ये नियम तो अपन ने समझ लिया कि सातवें के ऊपर केवल शुक्ल लेश्या होती है लेकिन आठवें के नीचे शुक्ल लेश्या होगी कि नहीं होगी? हो सकती है, उसका निषेध नहीं किया, उसके ऊपर अन्य लेश्याओं का निषेध किया लेकिन वहां पर शुक्ल लेश्या का निषेध नहीं किया। इसलिए क्या कहा, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर क्षीण कषाय पर्यंत जो जीव है उनका लोक का असंख्यात व भाग प्रमाण क्षेत्र है। संयोग केवल नाम अलेश्या नांच, फिर जो संयोग केवली है और जो अलेश्या वाले, अलेश्या वाले तो चौदहवें गुण स्थान वर्ती है अयोग केवली, इनका जो सामान्य उत्तम क्षेत्र, सामान्य में जो क्षेत्र बतलाया था उतना है। फिर भव्य मार्गण आ गई, भव्यानुवादीन भव्यानाम चतुर्दशा नाम सामान्य उत्तम क्षेत्र, चौदह जो भव्य हैं कौन, एक से चौदह गुणस्थान तक, क्योंकि अभव्य का सिर्फ एक ही गुणस्थान होगा अनादिकाल से अनंत काल तक, कभी उनका गुणस्थान बदलना नहीं ऊपर वाला। तो ये चौदह गुणस्थान वाले जो भव्य हैं उनका सामान्य कथित क्षेत्र है। अभव्यानां सर्वलोक, अभव्यों का क्षेत्र सर्वलोक है। फिर अब सम्यक्त मार्गण आ गई, सम्यक्त अनुवादेन, सम्यक्त की अपेक्षा क्षायिक सम्यक दृष्टि नाम असंयत सम्यक दृष्टियादि जयोग केवल्यंता नाम। क्षायिक सम्यक दृष्टियों का कौन से गुणस्थान है क्षायिक सम्यक दृष्टि के, चौथे से चौदहवां गुणस्थान। तो इन सब जीवों का फिर क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि नाम, क्षायोपशमिकों का कौन सा गुणस्थान, असंयत सम्यक दृष्टियाद्य प्रमत्तांता नाम, चौथे से सातवां गुणस्थान किनका, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टियों का। औपशमिक सम्यक दृष्टि नाम, फिर तीसरा औपशमिक सम्यक दर्शन है, उन औपशमिक सम्यक दृष्टियों का क्षेत्र कितना है, गुणस्थान देखो पहले बता रहे फिर क्षेत्र आगे बतलाएंगे। असंयत सम्यक दृष्टियादि उपशांत कषायंता नाम, उपशम सम्यक दर्शन जो होता है चौथे से ग्यारहवें गुणस्थान तक होता है इनका। और वो प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम, ऐसे दो भेद करोगे तो प्रथम उपशम सिर्फ पहले चौथे से सातवें गुणस्थान तक बनेगा और द्वितीय उपशम जो है वो पूरे इन सभी गुणस्थानों में बन जाएगा, नीचे आने की अपेक्षा से वो सब निचले गुणस्थान भी ग्रहण हो जाएंगे। उपशांत कषायंतनम, सासाधन सम्यक दृष्टि नाम, सम्यक तुमारगणा में ये भी ले लेते हैं सासाधन, फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम इसको भी ले लेते हैं, सम्यक मिथ्या दृष्टियों का, मिथ्या दृष्टि नाम और मिथ्या दृष्टियों को भी ले लेते हैं सामान्य उक्तम क्षेत्रम, सामान्य बताया गया क्षेत्र उतना ही है। संजिनियानुवादेन, फिर सैनी मार्गणा की अपेक्षा से संजीनी नाम चक्षुर्दर्शनीवत, सैनी जीवों का क्षेत्र चक्षुदर्शनियों के समान है। असंजनी नाम सर्वलोक, असैनियों का सर्वलोक है। तदुभय व्यपदेश रहिता नाम सामान्य उक्तम क्षेत्र, इन दोनों नामों से जो रहित है ऐसे केवली भगवंतों का सामान्य बतलाया गया क्षेत्र है। आहारानुवादेन, आहार मार्गण आ गई अंतिम मार्गण है, गई इंदिये चकाय, याद की थी गाथा, याद कर लेना चाहिए, जो होमवर्क देते हैं उसको पूरा करके आना चाहिए। गई इंदिये चकाय जोगे वेदे कसाय नाणीय संयम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नी आहारे। तो आहारक मार्गण आ गई अंतिम, आचार्य कहते हैं आहार अनुवाद इन आहार काणाम मिथ्यादृष्ट्यादि क्षीण कषायंता नाम, पहले को आदि लेकर क्षीण कषाय माने बारहवें गुण स्थान तक जो जीव है उनका सामान्य उत्तम क्षेत्र, सामान्य बताया गया क्षेत्र है संयोग केवल नाम। फिर तेरहवें गुण स्थान वालों का लोकस्य असंख्येय भाग है, लोक का असंख्यात्वा भाग है। अनाहार काणाम अनाहारक जीवों का मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि अयोग केवली नाम सामान्योक्तम क्षेत्रम, क्योंकि अनाहारक अवस्था कार्मण का योग के साथ बनती है, तो कार्मण का योग कहाँ कहाँ बन सकता है, पहले गुण स्थान में, दूसरे में और चौथे में, और अयोग केवली भगवान में भी अनाहारक अवस्था होती है, वहाँ कार्मण काय योग नहीं होता क्योंकि वहाँ तीनों योगों का अभाव है, लेकिन अवस्था अनाहारक होती है क्योंकि आहार वर्गणाओं को वो ग्रहण नहीं कर रहे बिना योग के। फिर संयोग केवली नाम, संयोग केवलियों का क्षेत्र कितना है जो अनाहारक है उनकी बात चल रही है। लोकस्य असंख्येया भागा, लोक के असंख्यात भाग, इसका मतलब असंख्यातवा भाग नहीं, लोक के असंख्यात भाग संयोग केवली भगवान समुद्घात के दौरान बना लेते हैं जब फैलाते हैं आत्म प्रदेशों को, तो सर्वलोकों का, और लोक पूरण में तो सर्वलोक को अपन व्याप्त कर लेते हैं। क्षेत्र निर्णय कृतः, क्षेत्र का निर्णय कृतः यानी कर लिया। पर्याय होती है उसका कर्ता वही द्रव्य होता है, तो समुद्घात रूप पर्याय हुई तेरहवें गुणस्थान में, उस पर्याय के कर्ता तेरहवें गुणस्थान वर्ती भगवान होंगे, तो करते हैं। और इच्छा की जहां तक बात है तो इच्छा पूर्वक करने का काम तो समुद्घात को आप छोड़ दो, न तो वो उपदेश देते हैं इच्छा पूर्वक, न उनके अतिशय इच्छा पूर्वक होते हैं, कोई इच्छा नाम की चीज ही नहीं वीतराग भगवान, इच्छा दसवें गुण स्थान तक के है, दसवें गुण स्थान के ऊपर इच्छा का कोई काम ही नहीं। स्पर्शन मुच्यते, अब स्पर्शन कहा जाता है, जैसे अंतर में बड़ा लोग रस लेते हैं, रोचक प्रकरण होता है अंतर का, स्पर्शन में देखिए तद द्विविधम, वो दो प्रकार का होता है, सामान्येन विशेषेण च, सामान्य से और विशेष से। सामान्येन तावत, सामान्य से का मतलब गुणस्थान से, और विशेष यानी मार्गणाओं की अपेक्षा। सामान्येन तावत मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोकस्पृष्ट, मिथ्या दृष्टियों ने सारा लोक छू लिया है। सासाधन सम्यक दृष्टि भी लोकस्यासंख्य भाग अष्टौ द्वादश वा चतुर्दश भागा देशोना। अब सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों ने लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्श किया है, फिर और उसके भेद बना रहे अष्टौ द्वादश वा चतुर्दश भागा देशोना, आठ बटे चौदह या बारह बटे चौदह भाग भी सासाधन सम्यक दृष्टि स्पर्श कर लेते हैं। इसका खुलासा दिया है क्या नीचे? आगे पढ़ लेते हैं, फिर इसका स्पष्टीकरण अपन और देख लेंगे। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि भिर, तीसरे चौथे गुणस्थान वालों द्वारा लोकस्य असंख्ये भाग, लोक का असंख्यात वा भाग, अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशोना, आठ बटे चौदह भाग भी देशोना यानी कुछ कम, वातवलयों को छोड़ करके थोड़ा कम उन्होंने स्पर्श कर लिया। अब ये जो स्पर्श होता है ना, ये समुद्घात के समय बनता है। समुद्घात सात प्रकार के होते हैं, अभी तो केवली समुद्घात की अपन ने चर्चा की थी, वैसे सात प्रकार के समुद्घात होते हैं, तो उनमें से एक मारणांतिक समुद्घात होता है, फिर वैकृत समुद्घात भी होता है, तेजस समुद्घात भी होता है, कार्मण समुद्घात तो नहीं होता। वेदना समुद्घात होता है, कषाय समुद्घात होता है। तो अभी ये आठ बटे चौदह और बारह बटे चौदह ये जो बनाया है दूसरे गुणस्थान के साथ, ये नियम है कि सप्तम पृथ्वी से सम्यक दर्शन के साथ जीव बाहर नहीं निकल सकता। और सम्यक दर्शन की तो छोड़ बात, वो मिथ्यात्व के साथ ही बाहर निकलता है सप्तम पृथ्वी से। छठी पृथ्वी की बात करें तो सासादन के साथ यदि बाहर निकल जाए तो कहां तक जाएगा? मध्यलोक तक जाएगा। अब छठी पृथ्वी कितने राजू नीचे है? छह राजू, चलिए पांच राजू हो जाएगी। तो ये पांच हो गए, और फिर वही सासादन सम्यक दृष्टि, अगर फिर उस गति से समुद्घात करता है और समुद्घात करके उसको वहां ऊपर उत्पन्न होना है एक इंद्रिय आदि में, बादर पृथ्वी का एक सिद्ध शिला वगैरह में जो जीव रहते हैं, वहां तक जाना, तो ये सात राजू हो जाएंगे। तो सात वो हो गए ऊपर के, और नीचे के पांच हो गए, तो ये बारह राजू बन जाते हैं। वो वर्तमान क्षेत्र का नाम नहीं है, वर्तमान में जो क्षेत्र है अपना उसको क्षेत्र कहेंगे, लेकिन पहले का और फिर आगे का मिला करके अगर अपन गिनती करते हैं तो उसी का नाम स्पर्शन हो जाता है। तो दूसरे गुण स्थान के साथ उस जीव ने इतना स्पर्श कर लिया, तो इतना स्पर्श कर लेने के कारण उसका क्षेत्र इतना हो गया। इसी प्रकार कोई देव है, उसने यदि तिरेंचायु का बंद किया है और वो भवनत्रिक का अथवा निचले दो स्वर्गों का देव है, वो अगर नीचे चला जाता है पहली दूसरी तीसरी पृथ्वी तक, तो दो राजू में तीन पृथ्वियां हैं, और फिर वहां से अगर समुद्घात करता है, लेकिन वो भंग थोड़ा सा अलग बनेगा क्योंकि यहां पर आठ राजू दिए हैं। आठ राजू बनाने के लिए सोलह स्वर में देव कैसे उत्पन्न होगा? तो ऑलरेडी देव है। ठीक है, इसका विवरण अपन फिर देखते हैं, अभी तो इसको ऐसे ही चलने दे कि इतना क्षेत्र मतलब स्पर्श कर लेता वो। ये आठ वाला तो हिसाब आ गया। फिर संयता संयतैर लोकस्य असंख्य भागः, संयता संयत जीवों ने लोक का असंख्यातवा भाग छुआ है। षट चतुर्दश भागावा देशोना, अथवा छह बटे चौदह राजू का भाग उन्होंने स्पर्श किया, क्योंकि संयता संयत जो होते हैं वो अधोलोक में नहीं होते, मध्यलोक में ही होते हैं। और संयता संयत गुणस्थान वर्ती जीव, चाहे एक अणुवृत्ति तिर्यंज हो या उपचार महावृत्ति आर्यिका हो और ग्यारह प्रतिमाधारी कोई भी हो, ये यदि पंचम गुण स्थान वर्ती हैं तो फिर ये उस समय मारणांतिक समुद्घात के द्वारा छह बटे चौदह राजू का स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि अच्युत स्वर्ग सोलहवां स्वर्ग जो है वो यहाँ से पृथ्वी से छह राजू दूर है। तो यदि उनको सोलहवें स्वर्ग में उत्पन्न होना है तो यहाँ से मृत्यु के पूर्व उनके आत्मा के प्रदेश फैल जाएंगे, विस्तृत हो जाएंगे, तो उस स्थान का स्पर्श करके लौट आएंगे, तो छह राजू का स्पर्श हो जाएगा। छह बटे चौदह का मतलब चौदह में से छह राजू। प्रमत्त संयतादि नाम अयोग केवल्यंता नाम क्षेत्रवत स्पर्शनम, प्रमत्त संयत को आदि लेकर अयोग केवली तक क्षेत्र के समान ही स्पर्शन होता है। अब गत्यनुवाद, अब ये जो मार्गणा है इनमें और खुलासा होगा इसका। विशेषेण गत्यनुवादीन है, विशेष से देखें मार्गणा की अपेक्षा, तो गति मार्गणा की अपेक्षा नरक गतो, नरक गति में प्रथमायाम पृथिव्याम, पहली पृथ्वी में नारकैश नारक जीवों ने चतुर्गुण स्थानैर, चार गुणस्थान वाले हैं नारक, उन्होंने लोकस्य असंख्य भागस पृष्ठ, लोक का असंख्यात्वा भाग छुआ है। अब वो चाहे कषाय समुद्घात करे, वेदना समुद्घात करे, कुछ भी करे, वो नरक में रहने वाले वो लोक का असंख्यात व भागी होगा उनका क्षेत्र, उनका स्पर्शन। फिर द्वितीय आदिशु प्राक सप्तम्या, दूसरी पृथ्वी को आदि लेकर सातवीं से पहले तक, यानी दूसरी से छठी पृथ्वी वाले, मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि भर, पहले और दूसरे गुणस्थान वालों ने लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात व भाग, एको द्वौ त्रयः चत्वारः पंच चतुर्भजदश भागा वा देशोना। अब ये पृथ्वियों की जो दूरी है उस हिसाब से इतने भाग बन जाएंगे उनके। वही बात आ गई ना, दूसरे से लेकर छठी पृथ्वी तक पहला गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान लेकर के जो जीव रह रहे हैं वो स्पर्शन कितना करेंगे, तो वही मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से स्पर्शन बनाना पड़ेगा। तो एक राजू का स्पर्शन, अब एक राजू का स्पर्शन ऊपर की दो पृथ्वियों वाले करेंगे, दो राजू का स्पर्शन तीन पृथ्वियों वाले, तीन राजू का स्पर्शन चार पृथ्वी वाले, चार राजू का स्पर्शन पांच पृथ्वी वाले, और पांच राजू का स्पर्शन छठी पृथ्वी वाले कर लेंगे, और चतुर्दश भाग माने उसको चौदह के साथ वो रख लेते हैं, इतने बटे चौदह, तो इसका मतलब ये हुआ कि चौदह राजू में से इतना भाग वो स्पर्श कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ, ये एकदम फास्ट हो रहा है, थोड़ा और धीमे कर लें। मारणांतिक समुद्घात, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि मरने के पहले जीव कहाँ जन्म लेने वाला है उस स्थान को छू लेता है, जहाँ जन्म लेने वाला है अगला जन्म, तो उस स्थान को वो यहीं से, अभी आयु पूर्ण नहीं हुई, थोड़ी बची है, तो बस उसके पहले वो छू लेता है उस स्थान को, और फिर छू करके वापस आ जाता है इसमें, और फिर प्राण उसके छूटते हैं। तो वो जो स्पर्शन है मारणांतिक समुद्घात संबंधी, वो नरकों में इन दो गुणस्थान वालों के साथ इस प्रकार बनता है, एक बटे चौदह, ये पहली दो पृथ्वियों वालों के लिए, क्योंकि पहली दो पृथ्वियाँ पहले प्रथम राज्यों में होती है, फिर तीसरी पृथ्वी जो है दो राज्यों दूसरे राज्यों में आती है। राज्यों का मतलब क्या है, एक क्षेत्र नापने की दूरी, जैसे यहाँ किलोमीटर चलते हैं, अब वो किलोमीटर में नहीं नाप सकते, वहाँ वहाँ बहुत बड़ा हिसाब किताब है, तो वो राजू बोलते हैं। तो ये ऐसे नीचे की तरफ नापेंगे, एक राजू यहाँ दो पृथ्वी होगी, दूसरे राज्यों में तीसरी, फिर ऐसे करते करते पांच राज्यों में छह पृथ्वियाँ होती है, छह राज्यों में सात पृथ्वियाँ होती है। अब आप पूछेंगे कि नीचे एक राजू आखिरी जो है उसका क्या होता है, क्योंकि ऊपर तो सात राजू हैं, फिर एकदम आखिरी जो नीचे वाला जो राजू है उसका क्या होगा, तो वहाँ पर नरकों का अभाव है, छह राज्यों में सात नरक पृथ्वियाँ हैं, अंतिम राजू जो है वो खाली पड़ा है, वहाँ पर उसको आचार्य अकलंक देव ने कलंकला पृथ्वी का, वहाँ पर पंचेंद्री जीव नारक जीव तो नहीं रहते, लेकिन वहाँ पर निगोदिया जीवों का वास होता है। सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि पर लोकस्य असंख्य भाग, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टियों ने लोक का असंख्यात व भाग छुआ है। सप्तम्याम पृथिव्यम, अब सातवीं पृथ्वी की चर्चा है, मिथ्या दृष्टि पर लोकस्य असंख्य भाग षट चतुर्दश भागा व देशो न, मिथ्या दृष्टियों ने लोक का असंख्यात व भाग छुआ है। अब वो दूसरे समुद्घातों की अपेक्षा से है, कौन से दूसरे, कषाय समुद्घात या वेदना समुद्घात, इनकी अपेक्षा से वो लोक का असंख्यात व भाग स्पर्श कर रहे हैं सप्तम पृथ्वी के नारक, लेकिन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टियों की बात चल रही है। षट चतुर्दश भागावा देशोना, मर करके जहां उनको जानवर बनना है उस हिस्से को छू करके आएंगे, तो नीचे छह राजू नीचे है सातवीं पृथ्वी, तो छह राजू का स्पर्श हो गया ना मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से। शेषैस त्रिभिर, शेष जो तीन गुणस्थान वाले हैं, सातवीं पृथ्वी में भी दूसरा तीसरा चौथा गुणस्थान है, तो उन तीन गुणस्थान वालों ने लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात व भाग ही छुआ है, उनको भी वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात हो सकता है वहां पर, लेकिन तो भी लोक का असंख्यात व भाग स्पर्श करेंगे। तिर्यगतो, तिरेंज गति में तिरश्चाम मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोक स्पृष्ट, जो मिथ्या दृष्टि तिरेंज है, तिरेंचों के अंदर जो मिथ्या दृष्टि है उन्होंने सारे लोक का स्पर्श किया है। सासाधन सम्यक दृष्टि फिर दूसरे गुणस्थान वालों ने लोकस्य असंख्य भाग सप्त चतुर्दश भागा वा देशोना, लोक का असंख्यात वा भाग छुआ है, अथवा 7/14 हिस्सा लोक का स्पर्श कर लिया है, मतलब 7 राजु का स्पर्श भी दूसरे गुणस्थान के साथ त्रियंश कर लेते हैं मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से। किसी त्रियंश गति के जीव को साधन सम्यक के साथ समुद्घात करना है तो वो जैसे बादर पृथ्वी का एक या जल का एक या वनस्पति का एक जीवों में जन्म लेने वाला है, और वो जन्म कहाँ लेने वाला, सिद्ध शिला पर, तो यहाँ से 7 राजु ऊपर है सिद्ध शिला, तो फिर वो यहाँ से समुद्घात करेगा, समुद्घात करके फिर वापस यहाँ आएगा, फिर मरण को प्राप्त होकर वहाँ उत्पन्न हो जाएगा 7/14 राजु। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि पर लोकस्य असंख्य भाग, सम्यक मिथ्या दृष्टि होने तो लोक का असंख्यात व भाग ही छुआ है, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। जिन गुणस्थानों में मरण नहीं होता उन गुणस्थानों में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता, जिन गुणस्थान में मरण होता है उन गुणस्थानों में मारणांतिक समुद्घात होता ही है, ये नियम नहीं है। ध्यान से क्या होता है कि कई बार सुनने में थोड़ा सा दिमाग चकराने लगता है। अब इसके लिए क्या है कि आपको नमोर यंताणम पद का जो सफेद वर्ण में ध्यान है वो बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उससे क्या होगा कि बुद्धि बिल्कुल प्रखर होती है और फिर विचार स्पष्ट होते हैं, नहीं तो फिर एकदम थोड़ा सुनने के बाद एकदम उलझने लग जाते हैं, जैसे मतलब जैसे आबू में ऊपर देखो तो फिर वो धुम्मस आ जाता तो आगे की गाड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं दिखती, वैसे ही अपनी बुद्धि में भी एक धुआं सा आ जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन उसकी स्पष्टता के लिए, उस धुम्मस को हटाने के लिए नमो और हंताड़म का ध्यान करना चाहिए जो सवेरे आपने किया था ना। और ज्ञानावरण के क्षयोपशम के लिए आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक ग्रंथ में लिखा है, बड़ी अद्भुत बात लिखी है, और ग्रंथों में मिलना मुश्किल है। उन्होंने लिखा है कि विशुद्धि से ज्ञानावरण का क्षयोपशम बढ़ता है, यानी अपनी भावनाएं जितनी पवित्र होगी ज्ञान उतना प्रखर होता जाएगा। पर ये दोनों तरफ का नियम नहीं है, एक तरफ का नियम है। जिसका ज्ञान प्रखर नहीं है वो अगर भावनाओं को पवित्र बनाता है तो उसका ज्ञान प्रखर हो सकता है, पर इसमें एक शर्त है, यदि निधत्त निकाचित श्रेणी का ज्ञानावरण कर्म आपने पूर्व जन्म में बांधा है तो फिर उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें कोई करण नहीं होता ना। निधत्त में कोई ऐसे अलग से क्षयोपशम नाम का कोई करण होना नहीं, उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर वो कुछ नहीं हो सकता। जैसे शिवभूति मुनि थे, उनकी विशुद्धि तो बहुत थी लेकिन वो स्मृतिक ज्ञानावरण का क्षयोपशम उनका होता नहीं था, क्यों, क्योंकि उनका पूर्व तीव्र कर्म था पत्थर की लकीर जैसा, इसलिए नहीं होता था। वैसे सामान्यतः अगर कोई थोड़ा कमजोर श्रेणी का ज्ञानावरण हो किसी का तो वो पुरुषार्थ के द्वारा उसका क्षयोपशम कर सकता है विशुद्धि बढ़ाकर, और विशुद्धि के बिना भी किसी के ज्ञानावरण का क्षयोपशम अधिक हो सकता है। ऐसा नियम नहीं है कि विशुद्धि हो तभी क्षयोपशम हो। बड़े बड़े खुरापाती लोगों का ज्ञान बहुत तेज होता है, उनकी बुद्धि इतना चलती है कि अपना अपनी भी न चले। राजनेता लोग भी हो सकते हैं या फिर प्रवक्ता लोग भी हो सकते हैं, सब प्रकार के लोग रहते हैं। तो कुछ पूर्व में उनसे ऐसा कुछ कार्य हुआ है कि उसका फिर ऐसा चलता है, वो क्षयोपशम लेकर के आ जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। फिर ज्ञानावरण का बंध अगर नया बांध रहे हो, अब क्या होता है कि कौन सा ज्ञानावरण बाधक बन जाता है, ला इलाज हो जाता है, तो उसका उत्तर तत्वार्थ ग्रंथ में इसी में आगे चलकर के 6 अध्याय में था, तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधोपना साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणीय। तो वो इन कारणों से अगर ज्ञानावरण का बंध किया है तो फिर आगे चल करके जो अज्ञानता आएगी, बुद्धि एकदम मंद हो जाएगी, वो लाइलाज होगा। जैसे इसमें अमृतचंद स्वामी ने शास्त्रों को बेचना भी लिया है कि शास्त्रों को बेचने से भी ऐसा ज्ञानावरण बंधता है कि फिर आगे चल करके उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। पर अभी आज इस युग में इसका पूरा प्रचलन है भरपूर, शास्त्र विक्रय तो एक आम चीज़ हो गई, बल्कि अच्छे खासे लोग उसमें जुड़े हुए रहते हैं। कभी कभी तो उसको आधी कीमत पर या फिर और कम कीमत पर। हाँ, इसमें एक बात जरूर हो सकती है कि यदि उस धन का उपयोग उसी उसी में लगता रहे धर्म कार्यों में, तब फिर कुछ परिणामों में भिन्नता बनती है। लेकिन अगर उससे वो अपनी आजीविका करता है, कमाई करता है, तो उसका परिणाम बिगड़ जाएगा।